स्वागत है आपका दिन भर में। सभी श्रोताओं को इकबाल अहमद का नमस्कार। तारीख 16 अक्टूबर और दिन रविवार। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने कहा, चरमपंथ के खतरे पर सारे देश हैं एकमत।
In the world we inhabit today, security and counter-terrorism cooperation is necessary if we are to secure the lives of our citizens.
ब्रिक्स सम्मेलन से भारत को क्या मिला, करेंगे एक विश्लेषण। संडे दिन भर में आज होगी मुलाकात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन से।
पहली बार ही मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसी फिल्म बनाई। कहीं ना कहीं ये बात जो है समाज के प्रति, हमारे आपसी विचार के प्रति, ये एक रूप था जिसे देख करके सुन करके अच्छा लगा।
और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत के गोवा में चल रहे दो दिन के ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य देश चरमपंथ के खतरे पर एकमत हुए हैं। किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो चरमपंथ को पालते हैं, उसको शह देते हैं, समर्थन करते हैं और बढ़ावा देते हैं, वो खुद चरमपंथी हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के दो दिन के इस सम्मेलन में आपसी कारोबार, अर्थव्यवस्था, एक साथ काम करने समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने सीरियाई शहर दाबिक को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले समूह के कब्जे से छुड़ा लिया है। तुर्की सीरिया की सीमा पर मौजूद छोटा सा शहर दाबिक इस्लामिक स्टेट के लिए अहम माना जाता है। यहां तक कि इस्लामिक स्टेट ने अपनी पत्रिका का नाम भी शहर के नाम पर दाबिक ही रखा है। सीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित दाबिक पर बीते करीब 2 साल से इस्लामिक स्टेट का नियंत्रण था। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में सीरियन रेबल आर्मी के सैनिक लड़ाई के लिए तैयारी करते दिख रहे हैं। एक लड़ाके ने कहा, हम लड़ाई शुरू करने की तैयारी घिनालिया, अजीजिया, अरशफ और ईश्वर ने चाहा तो दाबिक को देखते हुए कर रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में हम घोषणा करेंगे कि ये सभी गांव आज़ाद हो गए हैं और यहां इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर बगदादी को मानने वाले समूह की गंदगी साफ हो चुकी है। और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम शहर अलबाब की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ के गाँवों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। ये थे सीरियन रेबल आर्मी के एक लड़ाके के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि वो राष्ट्रपति बने तो अमरीका और भारत बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि सबसे अच्छे दोस्त होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका के लिए कोई कूटनीतिक रिश्ता भारत से ज़्यादा अहम नहीं होगा। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अमरीका में न्यूजर्सी में रिपब्लिकन हिंदू कोअलिशन फंडरेजर के दौरान शनिवार रात को बोलते हुए ट्रंप ने भारत को अमरीका का अहम रणनीतिक सहयोगी बताया। थाईलैंड के अधिकारियों का कहना है कि युवराज महावाजिरालोंगकोन चाहते हैं कि उनके राज्याभिषेक के लिए साल भर का इंतजार किया जाए। गुरुवार को देश के राजा भूमिपोन अदुन्यदेत के निधन के बाद युवराज ने कहा था कि अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाने के लिए उन्हें अधिक समय चाहिए। युवराज वाजिरालोंगकोन की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री प्रेम टिनासुलानोन संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। शनिवार को टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में मौजूदा प्रधानमंत्री जनरल प्रायुत चैनोचा ने देश के नागरिकों को युवराज के उत्तराधिकारी होने का भरोसा दिलाया और कहा कि वो चिंता ना करें। तुर्की के शहर गाजीमनेटेप में एक चरमपंथ रोधी कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 16 तारीख और दिन रविवार। रविवार है तो संडे दिन भर में आज आपको सुनवाएंगे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से एक मुलाकात, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत गोवा ब्रिक्स सम्मेलन से। गोवा में चल रहे दो दिन के ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के आखिरी दिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि ये दुखद है कि चरमपंथ का मदरशिप यानी जनक देश भारत का एक पड़ोसी देश है। सम्मेलन के आखिरी दिन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन में चरमपंथ को लेकर चिंताएँ जाहिर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाए जाने की बात कही है। सुनिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
गोवा में हो रहे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में चरमपंथ का मामला सबसे अधिक चर्चा के केंद्र में रहा। सम्मेलन के आखिरी दिन अपने संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर हमला करते हुए कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश चरमपंथ का जनक है। उन्होंने कहा कि सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि चरमपंथ राष्ट्रों और विश्व की शांति, स्थिरता और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है और इसके खिलाफ लड़ाई में सबका सहयोग जरूरी है।
इन द वर्ल्ड वी हैव इट इनहैबिट टुडे।
आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ अगर हम अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहते हैं तो सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ाई में सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद हमारे विकास और आर्थिक समृद्धि में एक गहरी परछाई की तरह है और इसकी पहुंच अब वैश्विक स्तर तक हो गई है। यह अब और अधिक जानलेवा है और इसने तकनीक का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। आतंकवाद के खिलाफ हमें समग्रता के साथ ही कार्रवाई करनी होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में चीन पर भी उसके रवैये के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चरमपंथ को लेकर किसी भी तरह दोहरा रवैया नहीं अपनाया जा सकता।
सिलेक्टिव अप्रोचेस टू टेररिस्ट इंडिविजुअल्स,
आतंकियों और उनके संगठनों के बारे में अपनी सहूलियत वाला दोहरा रुख रखना न केवल बेकार है जबकि यह इन्हें बढ़ावा देता है। इसमें किसी भी आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों और संगठनों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का आधार सिर्फ अपराध ही होना चाहिए। आतंकियों को फंडिंग, उनके हथियारों की सप्लाई, उनकी ट्रेनिंग और उनके राजनीतिक सहयोग को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की जरूरत है।
हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में इस मामले पर सीधे तौर पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने भी वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे चरमपंथ पर चिंता जाहिर की। सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, साझा व्यापार पर भी विस्तृत चर्चा की। उधर इस बार ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बिम्सटेक के नेताओं की मुलाकात चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेताओं से हुई। बिम्सटेक यानी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भारत के अलावा बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत ने सार्क के बजाय बिम्सटेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता देकर एक बार फिर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की है।
ये थे सलमान रावी। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी सैन्य ठिकाने पर चरमपंथी हमले और उसके बाद भारत पाक नियंत्रण रेखा पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों के बाद चरमपंथ का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में बन गया है। तो क्या ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत को अपनी चिंताओं को उन देशों को, खासकर चीन और रूस के नेताओं तक पहुंचाने में और भारत की चिंताओं को दूर करने में कोई कामयाबी मिली, और किस हद तक अगर मिली भी तो? यही सवाल मैंने पूछा द हिंदू अंग्रेजी अखबार के डिप्लोमेटिक एडिटर सुहासिनी हैदर से।
देखिए, भारत यहाँ पर मेजबान देश था, उसको देखना पड़ता है कि सारे जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं वो एक साथ एक जुट होके किसी साझा बयान, कोई साझा बयान दे सकें। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद पे जो भारत चाहता था, जो फ्रेजेस भारत चाहता था, शायद वो सारों को इस स्टेटमेंट में ना ला पाया हो। ऑफिशियल्स के अनुसार जो जिनसे हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक भारत के जो कंसर्न्स है वो रिफ्लेक्टेड है। जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि सारे कंट्रीज को बेसिस डिसमेंटल करने चाहिए, कि उनके जो यूएन के तहत उनके जो कमिटमेंट्स हैं उनको रखने चाहिए, और इतना और ये भी कहा गया है कि अपने जो टेरिटरीज हैं उनको टेररिस्ट बेसिस के लिए उपयोग नहीं किया जाए। ये सारे देशों को बताया गया है ब्रिक्स के साझा बयान से। हालांकि जो भारत शायद चाहता था स्पेसिफिक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, पाकिस्तान में जो बेस्ड ग्रुप्स हैं जैसे मोहम्मद लश्कर ए तोयबा के खिलाफ या सेफ हेवंस की जब बात होती है पाकिस्तान के खिलाफ, उनका जिक्र डिक्लेरेशन में नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट में आया था।
ظاہر ہے کہ ڈکلیریشنس میں ڈپلومیسی ہوتی ہے، شبدوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن اڑی حملے اور خاص کر بھارت کے جو سرجیکل اسٹرائک کے دعوے تھے، تو اس کے بعد سے جو روس اور چین سے شاید اس طرح کا آشواسن بھارت کو نہیں مل پا رہا تھا، یہاں جو بائی لیٹرل ملاقات ہوئی ان دونوں کی، پریزیڈنٹ پوتین سے اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے پردھان منتری مودی کی، ان کے بعد سے کیا کچھ بھارت کو تھوڑی سی اور جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھروسہ جگا ان دونوں کے دیشوں کے سمرتھن کا؟
مجھے لگتا ہے کہ جو بھارت یہاں پر کر پایا ہے اور اپنے بائی لیٹرلز میں، برکس کے جو ڈکلریشن میں بھی، اس سے ظاہر ہے کہ بھارت کے جو کنسرنز ہیں آتنکواد پہ، اور جہاں پردھان منتری مودی نے کہا ہے کہ آتنکواد سب سے بڑا تھریٹ ہے ریجن کے لیے، تھریٹ ہے پیس اور پراسپیریٹی کے لیے، یہ جو بھارت کا رخ ہے وہ سب نے سمجھا ہے، یہ مطلب پیش کیا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھارت کامیاب ہوا ہے، اور روس کے ساجہ بیان میں اگر آپ دیکھیں گے، بائی لیٹرل ساجہ بیان میں، وہاں پر کافی کچھ ایسا کہا گیا ہے جو بھارت کو آشوست کرے، چین کے ساتھ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، ایک بائی لیٹرل، ایک مطلب چھوٹا سا بائی لیٹرل تھا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ یہ لیڈرز ہیں، تین بار مل چکے ہیں پچھلے چار مہینوں میں، اور چین کے ساتھ جس طرح کا آشواسن بھارت چاہ رہا ہے وہ ہے مسعود اظہر کے بیننگ کا یونائٹڈ نیشنز میں، اور اس کا پرینام شاید ہم ابھی نہ دیکھ پائیں، کیونکہ اس کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے چین کے لیے وہ December 31st کو ہے، تو اگر آج اور کل میں جو باتیں ہوئی ہیں اس سے چین سمجھ چکا ہے کہ یہ بھارت کے لیے بہت مہتوپورن ہے اور چین بھارت کو اس وشے میں مدد کرنا چاہے، تو شاید اس کا پرینام ہمیں ابھی نہیں ملے گا، لیکن ہم دیکھ پائیں گے کچھ مہینوں میں۔
بمسٹیک کی بہت بات ہو رہی ہے، کیا بھارت اس کے ذریعے ایک دوسری طرح کا سارک کی کوشش کر رہا ہے؟
دیکھیے، بمسٹیک جو ہے بھارت کے اپنے انگ کا مطلب ایک ایکسٹینشن آف انڈیاز نیبرہڈ ہے، اور اگر آپ دیکھیں پہلے جو پردھان منتری مودی سارک کی طرف اپنا رخ بڑھا رہے تھے، سارک میں جو پولیٹیکل پرابلمز ان کو انہوں نے دیکھی ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ ان کو دہرانا نہیں چاہتے ہیں، تو بمسٹیک میں ایک ایسا سمیشن ہے جو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ زیادہ زور ڈالتا ہے، اور ایسے کنٹریز ہیں جو بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور بھارت سے بینیفٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے جو پروگریس میں بھارت بینیفٹ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے جیسے بھوٹان ہے، بھوٹان کے ساتھ بھارت کے اتنے پرانے سمبندھ ہیں، اور جب بھوٹان میں ہائیڈرو پاور ہوتا ہے تو بھارت اسے بینیفٹ لے سکتا ہے، اس کو تھوڑا اگر آپ بڑھائیں تو بھوٹان سے جو پاور ہے وہ بھارت اور بنگلہ دیش بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نیپال کے ساتھ بھی کچھ سمبندھ ہو سکتے ہیں اس پہ، تو بھارت ایسے بمسٹیک کو ایسے ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ اپنے کنٹری کے ایک ایکسٹینڈیڈ نیبرہڈ کا انگ ہو۔ اس کے علاوہ بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے، جہاں پردھان منتری مودی جی جانا چاہتے ہیں کہ ایکٹ ایسٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ود دی ایسٹ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بمسٹیک دیشوں کا ایک ساتھ ہونا بہت ہی مہتوپورن ہے۔
یہ تھی دا ہندو اخبار کی ڈپلومیٹک ایڈیٹر سہاسنی حیدر۔
دن بھر شارٹ ویو 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 7,565, 9,460, 9,510 اور 11,795 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
تو ایک دفعہ پھر سواگت ہے آپ کا دن بھر میں، میں ہوں اقبال احمد۔ اس وقت ہو چکے ہیں 7:43 اور 14 سیکنڈ۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، آج ہے دن بھر، تو آج ہوگا سنڈے دن بھر بھی۔ تو سنڈے دن بھر میں آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بالی ووڈ کے مشہور ستارے امیتابھ بچن سے۔ سنیں ہمارے سہیوگی سشانت موہن نے ان سے آخر کیا کیا خاص باتیں کی۔
اینگری ینگ مین جیسے خطابوں سے نوازے جا چکے ہمارے ساتھ ہیں بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن، سواگت ہے آپ کا۔
دھنیواد آپ کا۔
سر، بیتے 11 اکتوبر کو آپ کا جنم دن تھا، تو سب سے پہلے اس کی بہت بہت بدھائی، اور کئی لوگ آئے آپ سے ملنے، بدھائیاں بھی ملی ہوں گی ظاہر سی بات ہے۔ جنم دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آدمی کو یاد آ جاتی ہے کئی باتیں، کئی یادیں، تو آپ کے جنم دن سے کوئی ایسی بات جڑی ہے، کوئی ایسی یاد جڑی ہے جو آپ ساجھا کر سکتے ہوں ہمارے ساتھ؟
اب کیا اس میں کہیں گے، کیا وچار دھارا ہے آپ کی، کیا سوچتے ہیں، کیا کریں گے سر، کیا نیم بنائیں گے، کیا نیم بنائیں گے؟
हाँ नहीं सर, आप शायद मेरी बात नहीं समझे। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई खास बात जो आपको याद आती हो, आप इस जन्मदिन पर याद करते हो, आपको अच्छा लगता हो, इतने साल हो गए हैं।
तब से लेकर अब तक हमको सांस आ रही है, बस यही काफी है, और क्या है।
अमित जी, वैसे मैं अभी सोच रहा था कि आपको बिग बी कहूं, महानायक कहूं, एंग्री यंग मैन सब बोलते हैं आपको, आपको इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा शब्द, कौन सा विशेषण आपको पसंद है अपने नाम के साथ?
कुछ नहीं है, ये सब जितने भी खिताब है ये सब आप लोगों ने लिखा है, हमने थोड़ी ना बनाया है, आप लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन जो किरदार होता है उसको निभाना पड़ता है।
तो सर, किरदारों की अगर बात करें तो लगभग 4 दशक यानी कि 47 वर्ष हो गए हैं आपको, और हमने आपको आनंद के डॉक्टर के रूप में भी देखा है, फिर जंजीर दीवार वाला एक दौर रहा जहां आप एंग्री यंग मैन थे, फिर एक दौर ऐसा आया जब आपकी फिल्में नहीं चल पाई, लाल बादशाह, कोहराम जैसी फिल्मों का भी एक वक्त था, और कौन बनेगा करोड़पति की सफलता के बाद का भी एक दौर रहा जिसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो इसमें से आपके लिए सबसे पसंदीदा या सबसे चुनौतीपूर्ण जो दौर था वो कौन सा रहा, आप किस दौर को अपने सबसे करीब मानते हैं?
ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हम तो प्रतिदिन किसी न किसी चुनौती को लेकर के काम करते हैं, और मेरी ऐसी धारणा है कि हमारे जीवन में, कलाकार के जीवन में, किसी भी कलाकार के जीवन में मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिदिन एक नई चुनौती आनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी चुनौती होगी जिसको हम कह पाएंगे कि हाँ ये अच्छी है या ये बुरी है, ये बड़ा मुश्किल है कहना। ऐसा कहना कि ये दौर मेरे लिए अच्छा था, ये बुरा था, और ये थोड़ा सा अचानक से बुरा था, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं? मैं तो चाहूँगा कि वो दौर कभी आए ना जहाँ हम कह सकें कि ये ज़्यादा अच्छा था, ये बुरा था। मैं चाहूँगा कि प्रतिदिन हमारे सामने कोई एक नई चुनौती रखे ताकि हम उसके साथ जूझ सकें, लड़ सकें और अपने आप को व्यक्त कर सकें।
अमित जी, अभी आपकी जो हालिया रिलीज फिल्म आई पिंक, उसे बहुत तारीफें मिली और आप तो सुन ही रहे होंगे कि एक तरह से इस फिल्म को बॉलीवुड में एक नई शुरुआत माना जा रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि बॉलीवुड ने ऐसी फिल्म बनाने में देर कर दी जो महिलाओं के लिए बात कर रही है, और पिंक जैसी फिल्में बहुत पहले आनी चाहिए थी। आप ऐसा मानते हैं? 47 वर्षों का आपका अनुभव है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो एक महिला प्रधान फिल्म बनाने में बॉलीवुड ने देरी की?
ये हमेशा जब एक फिल्म रिलीज हो जाती है उसके बाद ही इस तरह की टिप्पणी होती है, इसको बहुत पहले आना चाहिए था। उस समय बनती तो कहते हैं साहब बहुत जल्दी बना दिया आपने, थोड़ी दिन ठहर जाइए। ये निर्धारित नहीं होता है पहले से, किसी के मन में कोई एक धारणा आती है, कोई एक ख्याल आता है, कोई विचारधारा चलती है और वो सोचते हैं कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए। यदि वो चल जाती है तो कहते हैं यार इसको बहुत पहले आना चाहिए थे, तो बहुत ही अहम है मुद्दा। लेकिन बन गई है और प्रशंसा हुई है, इसी में तृप्ति होनी चाहिए।
इस फिल्म को कई लोगों ने फेमिनिज्म से भरपूर भी बताया, उन्होंने कहा कि एक फेमिनिस्ट व्यू है। क्या आप मानते हैं कि ये फिल्म जो है वो फेमिनिज्म से भरी हुई है या ये फिल्म फेमिनिस्ट है?
मुझे इस शब्द का अर्थ बताइए, मुझे क्या है इस शब्द का अर्थ, मुझे समझ में नहीं आता। फेमिनिज्म क्या होता है?
मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका मतलब समझाऊं?
जी
तो फेमिनिज्म में वो बातें होती हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, यही सब बातें होती हैं मोटे तौर पे।
ये सब बातें जो हैं अगर फेमिनिज्म को निर्धारित करती हैं या उनका उल्लेख करती हैं तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये क्योंकि मैं अपने जीवन में भी यही मानता हूँ।
अमित जी, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस दौरान बढ़ते तनाव से भारत में कई लोगों ने पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध किया है। कई संगठन नेता पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई लोग हैं भारत में जो ऐसा नहीं चाहते। तो एक अभिनेता होने के साथ साथ एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर आपका क्या मानना है, क्या भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगना चाहिए?
ये सारी चीजें जो है हमारे जो एसोसिएशन है, इम्पा है, गिल्ड है, आर्टिस्ट एसोसिएशन है, ये सारे एसोसिएशन सब नियम बनाते हैं हमारे लिए, और केवल यहाँ अभी आर्टिस्ट के लिए नहीं है, और जगह भी डाल देते हैं कि फलां प्रोड्यूसर के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, या आप उस जमाने में शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे जब हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई थी आर्टिस्ट के ऊपर कि आप 6 फिल्म से ज्यादा में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने आर्टिस्ट थे वो उस जमाने में 20-30 फिल्में एक साथ किया करते थे और समय बहुत लगता था, खर्चा बहुत होता था, तो प्रोड्यूसर्स ने ये सीलिंग लगा दी कि हर एक आर्टिस्ट जो है वो केवल 6 फिल्मों में काम करेगा। तो इस तरह की पाबंदियां जो है, इस तरह के नियम जो है वो बनते रहते हैं, उसका हमको पालन करना पड़ता है, तो हम पालन कर रहे हैं।
आप पालन की बात कर रहे हैं लेकिन आप इस मामले में किसी सीधी टिप्पणी से बचते आ रहे हैं। आपने ट्वीट किया था कि हमारी सेना से जो टक्कर लेगा उसका यही हाल होगा, क्या ये पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ा हुआ ट्वीट था, ये तो बताइए।
वो एक फिल्म का डायलॉग था, अब इससे आप कुछ भी मतलब निकाल लीजिए। मेजर साहब की एक फिल्म थी मेरी, उसमें ये था डायलॉग। उस डायलॉग का महत्व आप समझ सकते हैं, समझ जाइए क्या है।
47 वर्ष लंबा समय होता है एक जगह पर काम करने के लिए। आप हिंदी भोजपुरी फिल्मों में 47 वर्षों से सक्रिय हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या फर्क देखते हैं आप इतने सालों में फिल्म इंडस्ट्री में।
47 वर्ष हो गए और जाहिर है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है बहुत सी चीजें बदलती जाती हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई है। जब मैं आया 1960 के दशक में तो बड़े बड़े मिचेल कैमरा होते थे जिसमें मैगजीन भरी जाती थी, फिल्म होता था, और अब तो फिल्म है नहीं। तो पता नहीं ये फिल्म इंडस्ट्री कहें या डिजिटल इंडस्ट्री कहें, क्या कहें इसको, अभी तो फिल्म तो है नहीं, नदारत हो गई है। फिल्म में ये था कि मैगजीन जो थी वो एक निर्धारित उसमें फुटेज होता था, अब डिजिटल है। अब जैसे पिंक जैसी फिल्म में हमने ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया डिजिटल कैमरा का, और जो कोर्टरूम सीक्वेंसेस थे वो अलग अलग हमने नहीं लिए, वो 15-15, 20-20 पन्नों का सीन एक साथ शूट हुआ, उसमें बीच में कभी रोका नहीं। और वो तभी संभव हो सका जब डिजिटल कैमरा था, क्योंकि उसको रीलोड करना नहीं पड़ता, वो चलता ही जाता है घंटों। फिल्म वाला कैमरा था उसमें बता देते हैं भाई अब फिल्म खत्म हो गई, अब रुक जाइए, या कट करके आपको दूसरा शॉट ले लिया। यहाँ पर ऐसा था कि 15-20 मिनट तक एक एक शॉट चलता था, और ऐसा नहीं था कि आपने अपना काम किया और उसके बाद आप चले गए अपने कमरे में। जितना भी आपके शॉट था वो आपको शॉट देकर के जहाँ भी आप बैठे हैं आपका रिएक्शन भी कैप्चर हो रहा है, क्योंकि 7-8 कैमरा चल रहे हैं। वो बहुत से बदलाव आए हैं।
अमित जी, आज से कुछ दिन पहले हम तापसी पन्नू से मिले थे एक इंटरव्यू के सिलसिले में, और उन्होंने बीबीसी से कहा था कि पिंक के सेट पर अमिताभ बच्चन बेहद गंभीर रहते थे। तो सर, ऐसा सच में था क्या कि आप बहुत गुस्से में रहते थे, हंसी मजाक नहीं करते थे?
बहुत झूठ बोला उन्होंने आपसे, क्योंकि मैं ऐसा था ही नहीं। कई बार मेरी जब उनसे साथ में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बिल्कुल विपरीत कहा है इसका। उन्होंने कहा कि नहीं, हो तो हंसते खेलते रहते थे, कभी भी सीरियस नहीं होते थे। ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने? नहीं, लेकिन जिस तरह का माहौल होता है अब हमारे सेट्स के ऊपर, बड़ा मुश्किल होता है उसको बयान करना। अगर कोई गंभीर सीन होगा तो जाहिर है कि हम लोग सब उसी के अंदर घुल मिल करके काम करेंगे, रिहर्सल हो रहा हो या किसी बात हो रहा। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, जितनी महिलाएं थी हमारे फिल्म में, तापसी हो, कीर्ति हो, एंड्रिया हो, वो तीनों बहुत गुणी, और जितने भी लड़के थे वो सब बहुत गुणी हैं हमसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि वो अपना हंसते खेलते रहते थे और जब शॉट आता तो ऐसा खूबसूरत शॉट देते थे, गंभीर, आंसू टपक रहे हैं, इमोशन हो रहा है सब कुछ। हमसे तो ये सब नहीं होता है, हमको तो कई बार रिहर्सल करना पड़ा। उनको मैंने कहा आइए हमारे साथ रिहर्सल कीजिए, तो एक दो रिहर्सल के बाद मैंने कहा सर अब आप यू नो बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, आप हम रिहर्सल नहीं करेंगे आपके साथ, आप बैठिए, हमको हम बहुत बोर हो जाते हैं आपके साथ। मैं अकेले ही करता था, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं वो कि वो माहौल जो था बहुत सीरियस था। हाँ, मेरा हो सकता है कभी कभी, बट काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है।
अमिताभ की पिछली रिलीज हुई फिल्म पिंक, जिसके निर्माता शुजीत सिरकार थे और जिसमें अमिताभ ने एक रिटायर हो चुके वकील का किरदार निभाया था, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा कारोबार किया ही, साथ ही साथ महिलाओं की आजादी, उनकी इच्छाएं, उनके दमन जैसे मुद्दों पर भी इस फिल्म ने जरूरी सवाल उठाए। अमित जी, फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं ही मिली सब तरफ से, लेकिन महिलाओं की ओर से मिली प्रतिक्रिया और भी अच्छी रही है। क्या ऐसी कोई प्रतिक्रिया आपको भी मिली जो आपको याद रह गई हो, किसी ने आपको पर्सनली आके कहा हो कुछ?
सभी जिस तरह की लोगों ने जैसे मैसेजेस भेजे या सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, वो हमें जानते नहीं हैं, और इस तरह की भाषा जब वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करते हैं, तो उनको सुन के, उनको पढ़ के अच्छा लगता है। बहुतों ने कहा कि थोड़ी बहुत तारीफ भी होती है कलाकार की, लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में आया या जो देखने में आया वो ये था कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये फिल्म बनाई। क्योंकि कई बार लोगों ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हम सबको एक आवाज़ दी। ये एक बहुत अजीब सा एक दृष्टिकोण है जो सामने आ रहा है। कई बार होता है कि पिक्चर जो है बहुत कमाल की पिक्चर बनाई आपने, या बहुत अच्छी है, या बहुत ही बकवास पिक्चर है और आपका काम बहुत ख़राब था, या आपका काम बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरह की जो व्याख्या है वो हमको, हमारे जितने भी फिल्मी जीवन था वो पहली बार ही मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसी फिल्म बनाई। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है समाज के प्रति, हमारे आपसी विचार के प्रति, ये एक रूप था जिसे देख करके, सुन करके अच्छा लगा।
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय हमें दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बात हो रही थी अमिताभ बच्चन से, और आपको बता दें कि धर्मशाला वनडे में भारत जीत गया है न्यूजीलैंड से, उसने 6 विकेट से विजय हासिल कर ली है। लेकिन उस खबर को बाद में, पहले एक दूसरी खबर। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में शनिवार देर शाम यूपी पुलिस और ATS ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ATS के मुताबिक 9 नक्सलियों को नोएडा से, जबकि 1 नक्सली और इन सब के कथित सरगना को चंदौली जिले से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए कथित नक्सली उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि बिहार के जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में नक्सली कहकर गिरफ्तार किया गया है, वे अपराधी हैं न कि नक्सली। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
नोएडा के हिंडन विहार इलाके में जब ATS ने शनिवार को देर शाम छापेमारी की तो किसी को भनक भी नहीं थी कि उनके आसपास नक्सली भी रहते होंगे। 6 नक्सली शनिवार को ही गिरफ्तार किए गए, जबकि बाकी 4 बाद में हुए। गिरफ्तारी की सूचना ATS के IG असीम अरुण ने दी।
एक सूचना मिली थी नोएडा पुलिस को, एक जागरूक नागरिक ने ये बताया कि हिंडन विहार में एक फ्लैट है, उसने उसका एड्रेस दिया और वहां पे उनको शक है कि कोई गलत गतिविधि हो रही है, कुछ संदिग्ध लोग वहां पे रुके हुए हैं। इस टिप ऑफ को SSP नोएडा श्री धर्मेंद्र साहब ने शेयर किया ATS के साथ में, और इसको पिछले कुछ सप्ताह से हम लोगों ने डेवलप किया। कल शाम को दबिश दी गई हिंडन विहार के इस फ्लैट में, और वहां से हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारियां की हैं, और उसके बाद में देर रात को, बल्कि अर्ली मॉर्निंग को, इनकी सूचना पर एक और स्थान है सदरपुर में, वहां पे दबिश दी गई, जहां से 3 और गिरफ्तारियां हुई।
असीम अरुण ने बताया कि इनकी सूचना पर पुलिस ने सुबह ही वाराणसी के पास चंदौली जिले से भी एक नक्सली की गिरफ्तारी की, जिसे इस पूरे गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं।
इनके पास से एक्सप्लोजिव्स और डेटोनेटर्स भी बरामद हुए। इंसास राइफल है, 2 और फैक्ट्री मेड राइफल्स हैं जो कि रिकवर की गई हैं। 3 SLR की मैगजीन्स भी रिकवर की गई हैं। इसका मतलब SLR राइफल भी इनके पास होगी और उसको हम लोग बरामद करने का प्रयास अभी कर रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि ये लोग नोएडा में मुख्य रूप से अपने संगठन को चलाने के लिए फंड इकट्ठा करने के मकसद से यहाँ रह रहे थे और बिहार और झारखंड के नक्सल इलाकों में कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले थे। पुलिस का ये भी कहना है कि ये यहाँ मुख्य रूप से लूटपाट के मकसद से थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। लेकिन बिहार पुलिस का कहना है कि बिहार के जिन लोगों को यूपी ATS ने पकड़ा है वो नक्सली नहीं है बल्कि अपराधी किस्म के लोग हैं। बिहार के IG ऑपरेशंस कुंदन कृष्णन ने BBC को बताया।
हाँ सर, यूपी ATS उसको इंक्वायर कर रहा है। They're all criminals basically. Earlier they may have been connected to some Maoist organizations. We are inquiring.
हालांकि कुंदन कृष्णन कहते हैं कि पहले इनका किसी नक्सली ग्रुप से कोई संबंध था या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है। वहीं जानकारों का कहना है कि नोएडा जैसे इलाकों में नक्सलियों का बेखौफ रहना और रणनीति तैयार करना बेहद चिंता की बात है। चंदौली और उसके आसपास बिहार से लगे कुछ इलाकों में नक्सलियों के सक्रिय होने और नक्सली गतिविधियों की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन नोएडा जैसे महानगर में अब तक शायद ऐसा नहीं होता था। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और जैसा कि मैंने बताया था कि भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है धर्मशाला वनडे में, और ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं आदेश जी। आदेश बताएं
जी। इकबाल, भारत के सामने जीत के लिए केवल 191 रनों का लक्ष्य था, जो भारत ने विराट कोहली के नाबाद 85 और केदार जाधव के नाबाद 10 रनों की मदद से 33.1 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इनके अलावा अजिंक्य रहाणे ने भी 33 रनों की उपयोगी पारी खेली। इससे पहले आज भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने बिल्कुल सही साबित करते हुए न्यूजीलैंड का पुलिंदा 43.5 ओवर में ही केवल 190 रन पर बांध दिया। हालांकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम एक छोर पर खूंटा बांधकर डटे रहे और उन्होंने नाबाद 79 रन बनाए। उनके अलावा टिम साउदी ने 55 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। एक समय तो न्यूजीलैंड के 7 विकेट केवल 65 रन पर गिर चुके थे। भारत के अमित मिश्रा ने 49 रन देकर 3 और आज अपना पहला वनडे मैच खेलने वाले हार्दिक पांड्या ने 31 रन देकर 3 और उमेश यादव ने भी 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
बहुत शुक्रिया आदेश। और जाते जाते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। भारत के गोवा में चल रहे 2 दिन के ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य देश चरमपंथ के खतरे पर एकमत हुए हैं। तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने सीरिया शहर दाबिक को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले समूह के कब्जे से छुड़ा लिया है। ترکی سیریا کی سیما پر موجود شہر دابق اسلامک اسٹیٹ کے لیے اہم مانا جاتا ہے۔ امریکی راشٹرپتی چناؤ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یدی وہ راشٹرپتی بنے تو امریکہ اور بھارت سب سے اچھے دوست ہوں گے۔ تھائی لینڈ کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ یوراج مہا واجیرا لونگپورن چاہتے ہیں کہ ان کے راجیابھیشیک کے لیے سال بھر کا انتظار کیا جائے۔ بی بی سی سماچار۔
تو دن بھر کی یہ سبھا یہیں سماپت ہوتی ہے۔ آج اسٹوڈیو کی ذمہ داری سنبھالی ہیمنت کشواہا نے۔ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی ابھی سے ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے بعد، یعنی 9:30 بھارتیہ سمے انوسار، کاریکرم گھٹنا چکر میں۔ اور اب اقبال احمد کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ نمسکار۔